एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे अमेरिकी विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम शायद विलियम जेम्स या जॉन ड्यूई जितना सुनने में ना आता हो, पर जिनका असर अमेरिकी दर्शन पर शायद सबसे गहरा है। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स की। अक्सर उन्हें अमेरिकी दर्शन का जनक कहा जाता है, पर वो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे ना?
बिल्कुल नहीं, पियर्स असल में एक बहुरंगी प्रतिभा थे। दार्शनिक तो थे ही, साथ में तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, सब कुछ। उन्हें अमेरिका का सबसे मौलिक विचारक कहना गलत नहीं होगा, मुझे लगता है। प्रैग्मैटिज्म, जिसे हम व्यवहारिकतावाद कहते हैं, और सेमियोटिक्स यानी संकेत विज्ञान, इन दो बहुत बड़े विचारों की नींव उन्होंने ही रखी।
अच्छा,
और आज भी मतलब हम दुनिया को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, इस पर उनके विचारों की गहरी छाप है। उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अद्भुत प्रतिभा, पर उतनी ही चुनौतियों भरी जिंदगी।
तो समझने की शुरुआत उनके समय से ही करते हैं। पियर्स का जीवन काल मतलब 1839 से 1914, ये अमेरिका के इतिहास में बड़े उथल पुथल का दौर था।
हाँ, बहुत ज्यादा।
वो दौर था जब अमेरिका एक तरह से गृह युद्ध की छाया से निकलकर एक बड़ी औद्योगिक और वैज्ञानिक ताकत बनने की राह पर था,
और बौद्धिक जगत में भी भारी मंथन चल रहा था। आप सोचिए, डार्विन का विकासवाद आया था
जिसने स्थापित मान्यताओं को हिला दिया होगा।
बिल्कुल, धार्मिक मान्यताओं को सीधी चुनौती मिली। विज्ञान, खासकर प्रायोगिक मनोविज्ञान, तेजी से अपने पैर जमा रहा था। दर्शन में भी पुरानी बहसें थीं, जैसे जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश अनुभववाद के बीच, लेकिन नए विचार भी जन्म ले रहे थे। पियर्स इसी माहौल में पले बढ़े।
और उन पर किसका प्रभाव ज्यादा रहा?
कहा जाता है कि इमैनुअल कांट का उन पर बहुत गहरा असर था। एक दिलचस्प किस्सा है कि उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में कांट की बेहद मुश्किल किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पढ़नी शुरू की थी।
16 साल की उम्र?
हाँ, और वो भी मूल जर्मन में। कहते हैं उसे समझने में उन्हें 3 साल लगे, रोज 2 घंटे वो उस पर लगाते थे।
कमाल है।
जाहिर है कांट का प्रभाव तो था ही, साथ ही मध्ययुगीन दर्शन और तर्कशास्त्र में जो नए विकास हो रहे थे उनका भी असर था।
और उनका पारिवारिक माहौल भी तो काफी बौद्धिक था।
यस,
कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में जन्म हुआ, पिता हार्वर्ड में गणित के प्रोफेसर थे।
जी हाँ, बेंजामिन पियर्स, वो अपने समय के अमेरिका के शायद सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक थे। तो पियर्स का बचपन हार्वर्ड के इर्द गिर्द ही बीता, प्रयोगशालाओं में, लाइब्रेरी में, किताबों के बीच। तर्क और विज्ञान तो जैसे उनकी रगों में थे।
हार्वर्ड से डिग्री भी ली उन्होंने?
हाँ, डिग्री ली, लेकिन देखिए, कभी कभी शुरुआती चमक अकादमिक सफलता की गारंटी नहीं होते। उनका व्यक्तित्व थोड़ा पेचीदा माना जाता है। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली तो थे, पर कुछ लोगों को अहंकारी या मुश्किल लगते थे।
अच्छा।
और फिर एक विवादास्पद तलाक हुआ, फिर दूसरी शादी। अब 19वीं सदी का जो रूढ़िवादी एकेडमिक माहौल था अमेरिका में,
हाँ, वो सब बातें मायने रखती होंगी।
बिल्कुल, ये बातें उनके अकादमिक करियर के लिए एक तरह से घातक साबित हुई।
तो क्या उन्हें कभी कोई स्थायी अकादमिक पद मिल ही नहीं पाया? फिर उनका गुजारा कैसे चला?
यही उनके जीवन की एक बड़ी विडंबना है। देखा जाए तो जिस कद के वो विचारक थे, उस हिसाब से उन्हें विश्वविद्यालयों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो शायद हकदार थे। उनका मुख्य काम प्रोफेसर का नहीं था, बल्कि उन्होंने 30 साल से भी ज्यादा अमेरिकी तटीय और भूगणितीय सर्वेक्षण, यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे जिसे कहते हैं, उसमें एक वैज्ञानिक के तौर पर काम किया।
वैज्ञानिक के तौर पर?
हाँ, वहां उन्होंने जियोडेसी मतलब पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन, और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। कुछ आविष्कार भी किए, जैसे पेंडुलम मापन में सुधार। अकादमिक दुनिया में उन्हें बस एक ही ठीक ठाक मौका मिला था, जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र पढ़ाने का, 1879 से 84 तक।
लेकिन वो भी ज्यादा चला नहीं?
नहीं, वो भी ज्यादा टिक नहीं पाया। शायद उनके व्यक्तिगत जीवन के विवादों का ही उसमें हाथ रहा हो।
सुनकर अफसोस होता है, इतनी प्रतिभा, और जीवन के आखिरी साल फिर कैसे बीते उनके?
आखिरी दशक तो पेंसिल्वेनिया के मिलफोर्ड नाम के काफी दूर दराज इलाके में गुजरे, और काफी गरीबी और अकेलेपन में। कहते हैं वो लगातार लिखते रहे, मतलब हजारों, बल्कि कुछ अनुमान तो कहते हैं 1 लाख से ज्यादा पन्ने उन्होंने लिखे।
1 लाख पन्ने?
जी, लेकिन उनके जीवन काल में छपा बहुत ही कम। उनके एक दोस्त थे विलियम जेम्स, जो खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश भी की थी। एक और बात है जो शायद उनके मुश्किल स्वभाव या चिड़चिड़ेपन की वजह रही हो, वे ट्राइजमिनल न्यूरालजिया नाम की एक भयानक दर्दनाक बीमारी से पीड़ित थे।
ओहो, वो क्या होती है?
इसमें चेहरे की नसों में असहनीय दर्द होता है। हाँ। तो शायद उसका भी असर उनके व्यवहार पर पड़ा हो।
तो इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद उनके विचार तो बड़े क्रांतिकारी निकले। सबसे पहले तो प्रैग्मेटिज्म का ही नाम आता है ना? हाँ। कहते हैं इसी विचार ने अमेरिकी दर्शन को एक नई पहचान दी।
हाँ, प्रैग्मेटिज्म की शुरुआत पियर्स से ही हुई, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये बात सच है कि इसे लोकप्रिय विलियम जेम्स ने बनाया, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि पियर्स का प्रैग्मेटिज्म जेम्स वाले से काफी अलग था।
कैसे अलग था?
देखिए, जेम्स का नजरिया थोड़ा व्यक्तिगत था। उन्होंने पूछा, क्या ये विचार मेरे लिए काम करता है? इसकी कैश वैल्यू क्या है? मतलब उन्होंने इसे व्यक्तिगत उपयोगिता और एक तरह की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से जोड़ा। पियर्स के लिए यह सवाल ही गलत था। पियर्स ने पूछा, इस विचार के कल्पनीय व्यावहारिक परिणाम क्या हैं? ऐसे परिणाम जिन्हें कोई भी देख समझ सके।
अच्छा, तो व्यक्ति से हटकर वस्तुनिष्ठ परिणामों पर जोर था।
बिल्कुल, उनके लिए प्रैग्मेटिज्म सत्य का सिद्धांत नहीं था, बल्कि अर्थ का सिद्धांत था। मतलब विचारों को स्पष्ट करने का एक तार्किक नियम।
मतलब किसी विचार का अर्थ उसके अमूर्त सार में नहीं है, बल्कि उसके ठोस दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों में है।
एकदम सही, यही उनका मशहूर प्रैग्मैटिक मैक्सिम है। उन्होंने कहा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, विचार करें कि हमारी अवधारणा की वस्तु के कौन से प्रभाव हो सकते हैं जिनका कल्पनीय रूप से व्यावहारिक महत्व हो सकता है। तब इन प्रभावों की हमारी अवधारणा ही वस्तु की हमारी पूरी अवधारणा है।
थोड़ा विस्तार से समझाएंगे।
मतलब अगर किसी विचार के आप कोई भी कल्पनीय व्यावहारिक परिणाम नहीं सोच सकते, तो पियर्स के अनुसार उस विचार का कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं है। वो बस शब्दों का खेल है और कुछ नहीं।
और जब जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म को अपने ढंग से पेश किया, तो पियर्स इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने सिद्धांत को एक अलग ही नाम दे दिया, प्रैग्मेटिसिज्म।
प्रैग्मेटिसिज्म, ये तो सुनने में भी अजीब है।
हाँ, वो मजाक में कहते भी थे कि नाम इतना बदसूरत है कि इसे कोई चुराएगा नहीं, या परणकर्ताओं से सुरक्षित रहेगा।
ये दिलचस्प है। तो उनका जोर तर्क और वैज्ञानिक समुदाय पर था, व्यक्ति पर नहीं। अच्छा, और दूसरा बड़ा विचार आपने बताया, सिमियोटिक्स यानी संकेत विज्ञान। ये तो और भी बुनियादी लगता है सुनने में। हाँ, और शायद ज्यादा दूरगामी भी। पियर्स ने संकेतों मतलब साइंस के अध्ययन का एक बहुत विस्तृत और बहुत गहरा ढांचा तैयार किया। ये यूरोप में फर्डिनांड डी सॉसर के काम से अलग विकसित हुआ, पर ये उतना ही या शायद कुछ मामलों में ज्यादा मौलिक है। पियर्स का मानना था कि हमारा सारा चिंतन, हर तरह की सोच अनिवार्य रूप से एक संकेत प्रक्रिया है, एक साइन प्रोसेस है। हम संकेतों के माध्यम से ही सोचते हैं, संवाद करते हैं।
सारा चिंतन, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे मन के अंदर जो हम खुद से बातें करते हैं, वो भी?
उनके अनुसार हाँ, वो भी। उन्होंने संकेत प्रक्रिया के तीन जरूरी हिस्से बताए। पहला है संकेत, साइन या रिप्रेजेंटेमन, यानी वो चीज जो प्रतिनिधित्व करती है, जैसे शब्द कुर्सी या मान लीजिए कुर्सी की तस्वीर। दूसरा है वस्तु, ऑब्जेक्ट, वो चीज जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, मतलब असली कुर्सी। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, इंटरप्रेटेंट, यानी संकेत को समझने वाले के मन में पैदा होने वाला अर्थ या विचार, जैसे आपके मन में कुर्सी का जो कॉन्सेप्ट बनता है।
अच्छा, संकेत, वस्तु और इंटरप्रेटेंट।
और कमाल की बात यह है कि ये जो इंटरप्रेटेंट है, जो अर्थ मन में बना, वो खुद भी एक नया संकेत बन सकता है। हाँ, जिससे अर्थ की एक अंतहीन श्रृंखला चलती रहती है। हमारा सोचना एक तरह से संकेतों की इसी श्रृंखला में बहना है।
और उन्होंने संकेतों के प्रकार भी बताए थे, कुछ आइकॉन, इंडेक्स जैसे शब्द सुने हैं।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुख्य रूप से तीन तरह के संबंध बताए संकेत और वस्तु के बीच में। पहला है आइकॉन, ये समानता पर आधारित होता है, जैसे किसी की तस्वीर या कोई नक्शा, वो उस चीज जैसा दिखता है जिसका वो संकेत है। दूसरा है इंडेक्स, यहाँ कारण कार्य या कोई सीधा भौतिक संबंध होता है, जैसे धुआं आग का इंडेक्स है, या अगर मैं उंगली से इशारा करूं तो वो इशारा उस चीज का इंडेक्स है।
ठीक है।
और तीसरा है सिंबल, ये पूरी तरह से परंपरा, नियम या बस समझौते पर आधारित होता है, जैसे भाषा के शब्द। कुर्सी शब्द का कुर्सी की शक्ल से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बस हमने मान लिया है कि ये आवाज उस वस्तु के लिए है, तो ये एक सिंबल है। और ये जो ढांचा है, आइकॉन, इंडेक्स, सिंबल, ये आज भाषा विज्ञान से लेकर साहित्य सिद्धांत, मार्केटिंग, यहाँ तक कि कंप्यूटर विज्ञान तक कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है।
ये तो वाकई सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, उनके और कौन से अहम विचार थे जिन्होंने दर्शन पर गहरा असर डाला?
एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण विचार है फैलिबिलिज्म।
फैलिबिलिज्म?
हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा सारा ज्ञान, चाहे वो कितना भी पक्का क्यों न लगे हमें इस वक्त, वो हमेशा गलत साबित हो सकता है। कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं है। पूर्ण निश्चितता, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, पियर्स के अनुसार एक भ्रम है। हमें हमेशा अपनी समझ को सुधारने और बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक तरह की वैज्ञानिक विनम्रता है।
लेकिन अगर सब कुछ गलत हो सकता है तो फिर किसी भी चीज पर यकीन करने का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये थोड़ी निराशाजनक बात नहीं लगती?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पियर्स निराशावादी नहीं थे। फॉलिबिलिज्म के साथ ही उनका वैज्ञानिक यथार्थवाद, साइंटिफिक रियलिज्म का विचार भी जुड़ा हुआ है। वो मानते थे कि एक बाहरी वास्तविकता है, दुनिया सचमुच में है, और विज्ञान हमें उसके करीब ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है।
ठीक है,
लेकिन फिर सत्य क्या है? यहाँ पियर्स की परिभाषा बहुत अनोखी है। उनके अनुसार सत्य वो नहीं जो आज हम मानते हैं, बल्कि सत्य वो है, उन्होंने कहा, वह राय जिस पर अंततः सभी जांचकर्ता सहमत होने के लिए नियत हैं।
मतलब
सत्य एक तरह की आदर्श मंजिल है, एक ऐसी राय जिस पर एक समर्पित आत्मसुधारक, यानी अपनी गलतियों को मानने और सुधारने वाला वैज्ञानिक समुदाय बहुत लंबी और निष्पक्ष जांच के बाद पहुंचेगा। ये एक आदर्श है जिसकी ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि हम शायद कभी भी पूरी तरह वहां पहुंच नहीं सकते। यही फॉलिबिलिज्म है।
तो ज्ञान एक व्यक्तिगत चीज नहीं, बल्कि एक सामूहिक, कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है।
कमाल का विचार है। और उनकी वो श्रेणियों वाली बात थी, फर्स्टनेस, सेकेंडनेस, थर्डनेस, वो थोड़ी मुश्किल लगती हैं समझने में।
हाँ,
वो उनके दर्शन का शायद सबसे अमूर्त हिस्सा है, लेकिन बहुत मौलिक भी। कोशिश करता हूँ संक्षेप में बताने की। फर्स्टनेस है किसी चीज की शुद्ध गुणवत्ता या संभावना, बिना किसी और चीज से संबंध के। जैसे सोचिए किसी रंग का पहला एहसास, मान लीजिए लालिमा, बस वो लालिमा, इससे पहले कि आप उसे सेब से या खून से या किसी और चीज से जोड़ें, वो शुद्ध गुण। सेकेंडनेस है टकराव, प्रतिक्रिया, वास्तविकता का अनुभव, जब एक चीज दूसरी पर असर डालती है या उसका विरोध करती है, जैसे दरवाजे से टकरा जाना या किसी चीज को धक्का देना, दो चीजों का आमने सामने आना। और थर्डनेस है नियम, आदत, मध्यस्थता, सामान्यता, वो चीज जो फर्स्टनेस और सेकेंडनेस को जोड़ती है, जैसे भाषा के नियम जो शब्दों को, फर्स्टनेस को वस्तुओं से, सेकेंडनेस से जोड़ते हैं, या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत जो घटनाओं को समझाता है।
फर्स्टनेस गुण, सेकेंडनेस टकराव, थर्डनेस नियम, मध्यस्थता।
हाँ,
पियर्स मानते थे कि ये तीन श्रेणियां हमारे हर अनुभव और पूरी वास्तविकता की संरचना करती हैं। ये थोड़ा गहरा है, समझने में वक्त लगता है।
हाँ, लगता तो है। अच्छा, एक और शब्द आपने शुरू में इस्तेमाल किया था, एबडक्शन। डिडक्शन और इंडक्शन तो सुना है, ये एबडक्शन क्या है?
हाँ, ये भी पियर्स का एक बड़ा योगदान है तर्कशास्त्र में। उन्होंने तर्क के पारंपरिक दो तरीके, डिडक्शन यानी सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष निकालना, और इंडक्शन यानी विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाना, के साथ एक तीसरा बहुत जरूरी तरीका जोड़ा, एबडक्शन। एबडक्शन है सबसे अच्छी व्याख्या या परिकल्पना, हाइपोथीसिस बनाने का तर्क।
अच्छा, कैसे? जब हम किसी चौंकाने वाली अनोखी घटना को देखते हैं तो उसे समझाने के लिए जो सबसे पहली, सबसे स्वाभाविक या प्लॉजिबल कहानी हम गढ़ते हैं, वो एबडक्शन है। ये वैज्ञानिक खोज के लिए, नई समझ पैदा करने के लिए बेहद जरूरी है। ये एक तरह का शिक्षित अनुमान, एजुकेटेड गेस है। जैसे जासूसी कहानियों में शर्लॉक होम्स अक्सर क्या करते हैं, वो सुरागों को देखकर एक संभावित कहानी बनाते हैं। वो एबडक्शन का बेहतरीन उदाहरण है।
अच्छा, अब समझ आया। तो इतने सारे गहरे और मौलिक विचार, लेकिन जैसा आपने कहा, उन्होंने अपने जीवन काल में कोई महान किताब नहीं लिखी, तो उनके विचार हमें मिलते कहां से हैं फिर?
ज्यादातर उनके बिखरे हुए लेखों में, अलग अलग जर्नल्स में छपी समीक्षाओं में, और सबसे बढ़कर उन हजारों अप्रकाशित पन्नों में जो वो अपनी मृत्यु के बाद छोड़ गए हैं। उनकी मौत के बाद 1930s के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके काम को संकलित करना शुरू किया। उसे कलेक्टेड पेपर्स ऑफ चार्ल्स सैंडर्स पियर्स कहते हैं, जो 8 भारी भरकम खंडों में छपा।
8 खंड?
जी हाँ। और असल में इसी संकलन के बाद दुनिया को उनके काम की सही गहराई और विस्तार का अंदाजा हुआ। कुछ लेख उनके जीवन काल में ही काफी प्रभावशाली रहे थे, जैसे एक था द फिक्सेशन ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास का स्थिरीकरण, जो 1877 में छपा। इसमें वो बताते हैं कि शक करना एक असहज मानसिक स्थिति है और हम सबका लक्ष्य होता है शक दूर करके एक स्थिर विश्वास पर पहुंचना।
ये तो दिलचस्प है।
हाँ, और वो विश्वास बनाने के चार तरीके बताते हैं। पहला, हठ का तरीका, टेनेसिटी, बस अपनी बात पर अड़े रहना। दूसरा, अधिकार का तरीका, अथॉरिटी, किसी संस्था या व्यक्ति का कहां मान लेना। तीसरा, तर्क का तरीका, एक प्रायोरी, जो सुनने में या सोचने में सही लगे उसे मान लेना। और चौथा, वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। और फिर वो तर्क देते हैं कि वैज्ञानिक विधि ही क्यों सबसे बेहतर है, क्योंकि वो बाहरी सबूतों पर टिकी है और सबसे महत्वपूर्ण, वो खुद को सुधार सकती है, सेल्फ करेक्टिंग है।
वैज्ञानिक विधि।
और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लेख था, हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर, अपने विचारों को स्पष्ट कैसे करें, जो 1878 में आया। यही वो लेख है जिसमें उन्होंने अपना प्रैग्मैटिक मैक्सिम दिया था, जिसकी हमने बात की। ये प्रैग्मैटिज्म का आधार ग्रंथ माना जाता है।
समझ गई। अच्छा, अब अगर विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई से उनकी तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या था? तीनों ही प्रैग्मैटिज्म के बड़े नाम माने जाते हैं।
हाँ, तीनों बड़े नाम हैं, पर उनके प्रैग्मैटिज्म में काफी अंतर था, खासकर उनके लक्ष्य और फोकस में। जैसा हमने कहा, पियर्स का फोकस था अर्थ की स्पष्टता पर और तार्किक पद्धति पर, उनका आधार वैज्ञानिक समुदाय था। जेम्स का फोकस ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव पर था, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पर और विचारों की व्यवहारिक उपयोगिता या कैश वैल्यू पर, मतलब वो विचार सच है जो मेरे लिए काम करता है। और जॉन ड्यूई, उन्होंने प्रैग्मैटिज्म को एक कदम और आगे बढ़ाया और उसे सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का एक उपकरण बना दिया। ड्यूई की रुचि समस्याओं को सुलझाने में थी, लोकतंत्र को बेहतर बनाने में थी।
तो पियर्स सबसे ज्यादा सैद्धांतिक और तार्किक रहे हैं इन तीनों में।
हाँ, कह सकते हैं वो मुख्यतः एक सैद्धांतिक दार्शनिक बने रहे, जो तर्क, अर्थ और वास्तविकता की अमूर्त संरचनाओं पर ज्यादा केंद्रित थे।
तो भले ही जिंदगी में उन्हें वो पहचान ना मिली हो, पर इतिहास ने उन्हें उनका हक दिया, लगता है। आज उनकी विरासत और प्रासंगिकता क्या देखते हैं आप?
निश्चित रूप से उनके कलेक्टेड पेपर्स छपने के बाद से उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है। आज बहुत से विद्वान उन्हें अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मौलिक दार्शनिक मानते हैं। प्रैग्मैटिज्म तो खैर अमेरिका का सबसे बड़ा दार्शनिक निर्यात बन गया, और सेमियोटिक्स पर उनका काम, वो तो अभूतपूर्व था। आज भी भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, संचार अध्ययन, मीडिया स्टडीज, कंप्यूटर विज्ञान, आप नाम लीजिए, सब जगह उसकी गूंज सुनाई देती है। उम्बर्टो ईको जैसे बड़े विचारक उनसे गहरे प्रभावित थे।
और आज के समय में
सोचिए, आज का जो पोस्ट ट्रूथ का दौर कहा जाता है, या सूचना का जो विस्फोट है, उसमें उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं। उनका फॉलिबिलिज्म हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है कि हमें सब कुछ नहीं पता और हम गलत हो सकते हैं। उनका ये विचार कि सत्य एक सामूहिक, लंबी, आत्मसुधारक खोज है, हमें जल्दबाजी के निष्कर्षों और ध्रुवीकरण से बचाता है। और उनका प्रैग्मैटिक मैक्सिम हमें बार बार याद दिलाता है कि विचारों को सिर्फ हवा में न देखें, बल्कि उनके वास्तविक दुनिया के परिणामों से परखें।
उनके कुछ कथन वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। वैज्ञानिक रवैये पर उनका एक कथन है जो मुझे बहुत पसंद आया था, आपने बताया था।
हाँ, वो वैज्ञानिक या सच्चे जांचकर्ता की एक बहुत अच्छी, बहुत सच्ची तस्वीर पेश करता है। वो कहते हैं, ये विज्ञान का व्यक्ति है जो तथ्य के स्रोत से पीकर अपनी हर राय को पुनर्जीवित करने, अपने हर विचार को तर्क संगत बनाने के लिए उत्सुक है, और अपना पूरा जीवन सत्य के संग्रह के लिए समर्पित करता है, जो स्वयं के प्रति अपने पूर्ण अविश्वास और प्रकृति के उच्च विधान के प्रति अपनी श्रद्धा को पोषित करना जारी रखता है।
स्वयं के प्रति पूर्ण अविश्वास, ये फॉलिबिलिज्म है।
बिल्कुल, इसमें वो विनम्रता है, अपनी गलती मानने की हिम्मत है, और अंतिम सत्य पा लेने के दंभ के बजाय खोज की प्रक्रिया के प्रति गहरा समर्पण झलकता है।
लेकिन क्या उनके विचारों की आलोचना भी हुई या कोई विवाद उनसे जुड़े रहे? जाहिर है इतने बड़े विचारक थे तो कुछ तो हो गई।
आलोचना तो हर बड़े विचारक की होती है, और पियर्स की भी हुई। एक तो जैसा हमने पहले बात की, उनके व्यक्तिगत जीवन और मुश्किल स्वभाव का जिक्र बार बार आता है, जिसने यकीनन उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। बौद्धिक स्तर पर देखें तो प्रैग्मैटिज्म की सही व्याख्या क्या है, इस पर हमेशा बहस रही है। क्या ये पियर्स का तार्किक नियम है या जेम्स का उपयोगितावाद, ये एक सतत बहस है। कुछ आलोचक उनके सत्य के अभिसरण सिद्धांत कन्वर्जेंस थ्योरी को थोड़ा चक्रीय मानते हैं कि सत्य वो है जिस पर जांचकर्ता अंततः सहमत होंगे और जांचकर्ता सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें एक तरह का गोला बन जाता है।
ये बात तो है।
कुछ लोग उनके वैज्ञानिक यथार्थवाद को आज के दर्शन के संदर्भ में थोड़ा भोला या ज्यादा आशावादी कह सकते हैं। और हाँ, उनकी लेखन शैली वो बहुत सघन है, तकनीकी शब्दों से भरी है और काफी बिखरी हुई है। उन्होंने अपने विचार लगातार बदले और सुधारे भी, जिससे उन्हें समझना और उनकी सुसंगत व्याख्या करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वो जो 1,00,000 से ज्यादा पन्ने वो छोड़ गए हैं अप्रकाशित, विद्वान आज भी उन्हें समझने, संपादित करने और प्रकाशित करने में लगे हुए हैं। ये काम अभी भी जारी है।
1,00,000 पन्ने, ये तो अविश्वसनीय लगता है। उनकी जिंदगी वाकई किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। इतनी जबरदस्त प्रतिभा, इतनी मुश्किलें और फिर इतनी बड़ी स्थायी विरासत।
बिल्कुल, पियर्स एक पहेली की तरह हैं, जिन्हें सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। उनका स्थायी महत्व शायद इसी बात में है कि उन्होंने वैज्ञानिक सोच की कठोरता को, उसकी सटीकता की मांग को मानवीय ज्ञान की अंतर्निहित सीमाओं यानी फॉलिबिलिज्म के साथ कैसे जोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान पाना कोई अकेले योद्धा की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमेशा संकेतों और भाषा के माध्यम से ही संभव होती है। ज्ञान कोई स्थिर खजाना नहीं है जिसे हमने पा लिया, बल्कि एक बहती हुई नदी है जिसमें हमें लगातार तैरना पड़ता है, दिशा ढूंढनी पड़ती है और शायद किनारे तक कभी पहुंचना नहीं होता।
तो अंत में अगर हम सोचें तो पियर्स हमें आज के लिए क्या मुख्य सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं?
मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है, हम अपने विश्वासों को, अपनी मान्यताओं को कैसे परखते हैं। क्या हम सिर्फ वो ही मानते हैं जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, या जो हमें बचपन से बताया गया है, या जो हमारे समूह के लोग मानते हैं, या फिर हम पियर्स की तरह ये मुश्किल सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं? इन विश्वासों के वास्तविक देखने योग्य व्यवहारिक परिणाम क्या हैं? दुनिया पर इनका क्या असर पड़ता है? और क्या हम अपने ज्ञान को अंतिम सत्य मानकर बैठ जाते हैं, या उसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के साथ संवाद करके, अपनी गलतियों को स्वीकार करके? आज की दुनिया में जहां विचारों का टकराव इतना ज्यादा है, मुझे लगता है ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए इकोतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।